जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज चंद्रंजन, यशोदानंदन ब्रज चंद्रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज चंद्रंजन, यशोदानंदन ब्रज चंद्रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवचस्कोन फाउंडर आचार्य सेवदेव होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी इज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी इज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी इज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी इज द श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारु अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 1 सब निकालिए मेरे पीछे सब लोग बोले।
अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव।
बोलिए शब्दार्थ बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा ज्यायसि श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसि नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोलिए।
ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन सलकयम् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाच देश तारिणे। ये श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो हे केशव, मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहां अर्जुन का प्रश्न है कि ये घोर कर्म है। घोर कर्म क्या? अपने ही सुजन संबंधियों का वध करना, खून हत्या है ना, अपने ही संबंधियों का है? तो आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं, है ना? अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्ध योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वे कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उन्होंने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। इसके पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से पिछले अध्याय में कि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है। उन लक्षणों का वर्णन करते समय भगवान ने जो बातें बताई तो उसमें भगवान ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए ना? दूसरे अध्याय में बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान कहते हैं तस्मात् युद्धस्य भारत है, इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन, है ना। लेकिन यहां पर भगवान ने जब स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बतलाए तो भगवान ने उनके द्वारा युद्ध का समर्थन तो नहीं किया, अर्जुन को जो है ना इसलिए मौका मिल गया कि अब तो युद्ध नहीं करना चाहिए मुझे हैं। और अर्जुन ने इस भावना से प्रश्न भी किया था कि जो समाधि में स्थित है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, हैं? तो अर्जुन के पूछने का जो भाव था वो भी यही था कि अगर स्थिर बुद्धि कोई व्यक्ति हो जाएगा, समाधि में स्थित हो जाएगा, तो फिर युद्ध क्यों करेगा, है? तो इस प्रकार से अर्जुन को जो है ना अब मौका मिल गया कि युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को जो है ना उन्होंने तर्क दिया, भगवान के उपदेश से ही अर्जुन ने भगवान से अब तर्क रखा भगवान के सामने कि अगर आप कर्म की तुलना में बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर कर्म क्यों लगा रहे? खाली कर्म नहीं, घोर कर्म। अब हम देखेंगे कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया, क्यों अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि पिछले अध्याय का श्लोक संख्या 54 है जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था, है ना। तो पिछले प्रश्न से लेकर के इस प्रश्न के बीच में जो भगवान के उपदेश हैं उनका थोड़ा विचार करिए। श्लोक संख्या 54 में तो अर्जुन ने कहा है कि क्या लक्षण है समाधि में स्थित पुरुष के, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब 55वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मन में जितनी भी घुसी हुई कामनाएं हैं उनको निकाल देता है, है ना। तो अर्जुन ने सोचा बस जब सब इच्छाएं निकाल दी तो फिर युद्ध क्यों करूं, है कि नहीं। तो अर्जुन के दिमाग में ही आया फिर युद्ध क्यों करूं, है? फिर भगवान कहते हैं आत्मन्येव आत्मनातुष्टः स्थित प्रज्ञा सर्वे, अपने द्वारा अपने अंदर ही संतुष्ट है, है ना, तो फिर युद्ध क्यों करूं, है? अर्जुन के दिमाग में यह विचार आ रहा है। 56वें श्लोक में भगवान ने कहा दुखे से उद्विग्न मना, दुखों में उद्विग्न उसका मन नहीं होता, दुखों में मन उद्विग्न नहीं होता तो युद्ध कैसे करेगा। अर्जुन इस प्रकार से जो है ना भ्रमित हो रहे हैं। सुखे सुगत स्पेहा, सुखों में उसकी कोई स्पेहा नहीं है तो फिर युद्ध क्यों करेगा, फिर किस लिए युद्ध करे। वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध को बिल्कुल उसने निकाल दिया, ना राग है ना भय ना क्रोध है, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे, क्यों युद्ध करेंगे। स्थित धीर मुनि रुचिते, फिर भगवान ने मुनि शब्द का प्रयोग किया। मुनि मतलब जो मननशील है, ज्यादा बात नहीं करता है, तो फिर युद्ध क्यों करूं, है ना। अब 57वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, यह सर्वत्र न विस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, शुभ की प्राप्ति अशुभ की प्राप्ति में है उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, ना भी नन्नति ना दृष्टि, स्नेह शून्य है, तो फिर युद्ध क्यों करेगा। शुभ अशुभ में ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, है ना, तो फिर युद्ध कैसे करेगा, युद्ध क्यों करेगा। तो इन श्लोकों में भगवान ने कहीं भी नहीं अर्जुन से कहा कि इसलिए तुम युद्ध करो, है ना। इसलिए अर्जुन के जो है ना दिमाग में यह बात बैठती जा रही है, भगवान जितना उपदेश दे रहे हैं कि समाधि में स्थित व्यक्ति कई लक्षण है, तो अर्जुन सोच रहे बस अब मुझको कारण मिल गया कि मैं युद्ध नहीं करूं, है ना। अब 58वें श्लोक में भगवान ने कहा यदा संघर्ते चायम कुरमोंगानी सर्वसा इंद्रियाणी इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से उसी प्रकार समेट लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, है? तो इंद्रिय के विषयों से अपने को अपनी इंद्रियों समेट लेता है, इंद्रिय के विषय नहीं भोगता है, तो फिर युद्ध क्यों करें? फिर युद्ध क्यों करें? फिर 59वें श्लोक में भगवान ने कहा, विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम सोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें क्या है कि सांसारिक के जो रस हैं, इंद्रिय तृप्ति के जो सुख हैं, तो वो भी उसके समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसको परम दृष्ट्वा परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर संसार के विषय में कोई उसको सुख नहीं, तो फिर वो अर्जुन ने क्या सोचा, फिर युद्ध क्यों करें? जब संसार की किसी भी चीज में वो सुख नहीं पाता है तो फिर युद्ध क्यों करेगा? 60वें श्लोक में तो भगवान ने बताया है कि इंद्रियां मन को बस मन का हरण कर लेती हैं, और 61वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि उन सब इंद्रियों को तानि सर्वाणि संयम में युक्ति आसीत मत परा, उन इंद्रियों को जो है बस में करके और युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण स्थित हो जाए। जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थित है। तो फिर अर्जुन ने कहा कि सब जो है इंद्रियों को बस में करके भगवान के चरण में अगर मन लगाया जाए और इंद्रियों को बस में किया जाए तो फिर युद्ध क्यों किया जाए? युद्ध क्यों किया जाए? श्लोक संख्या 62 में भगवान बताते हैं, विषयों का चिंतन करने से उसमें संग होता है और संग से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधाद्भुति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से सब नाश हो जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने से ऐसा होता है ना, तो विषयों का चिंतन ना किया जाए, फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है? अर्जुन सोच रहे हैं। 64वें श्लोक में भगवान ने कहा, राग द्वेष विमुक्त अस्तु विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रियों में अगर राग द्वेष नहीं है, है ना, तो अगर वो इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, आत्मवश्यन विधि आत्मा प्रसादम यदि गच्छति, तो उसकी इंद्रियां उसके बस में रहती हैं तो उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो फिर अर्जुन सोचते हैं कि इंद्रियों को बस में करने से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो फिर युद्ध क्यों करूं? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योप जाए दे प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि परिवर्तिषते, चित्त की प्रसन्नता से सब दुख समाप्त हो जाते हैं और चित्त की प्रसन्नता से बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब चित्त की प्रसन्नता अगर होगी तो युद्ध क्यों करेगा? तो अर्जुन फिर सोचते हैं युद्ध क्यों करूं? फिर 66वें श्लोक में भगवान ने कहा, नास्ति बुद्धि अरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम्। कि जो भगवान से नहीं जुड़ा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसके अंदर भावना नहीं है, और बिना भावना के शांति नहीं है, और बिना शांति के सुख नहीं है। तो फिर अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान से जुड़ना है तो फिर युद्ध क्यों किया जाए? श्लोक संख्या 67 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामविवामसि, कि इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। जैसे कि वायु नौका का हरण कर लेती है जब पानी में चल रही है नौका, है ना। तो फिर अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मन को जब जो है इंद्रियों से अलग रखना है तो फिर युद्ध क्यों किया जाए? 68वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तस्मात यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इसलिए हे महाबाहु जिसकी इंद्रियां इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों से वशीभूत हो गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है ना। तो फिर अर्जुन ये सोच रहे हैं फिर युद्ध क्यों किया जाए? 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यान सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, सब प्राणियों के लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है, यह श्याम जागृति भूतानी और जिसमें सब लोग जागते हैं साने सा पश्यतो मुनि, तो मुनि के लिए वो रात्रि है, है ना। तो दुनिया का जो है ना जो दिन होता है योगी के लिए वो रात होती है, है ना। तो फिर अर्जुन सोचते हैं फिर युद्ध क्यों किया जाए? ये सब दुनियादारी के काम है, युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना, फिर क्यों किया जाए? क्योंकि पश्यतो मुनि, जो मुनि है वो देखता है पूरा संसार एक प्रकार से रात्रि के समान है, उसका दिन दिन तो फिर है ना दूसरा ही है, आध्यात्मिक जगत में उसका दिन होता है। श्लोक संख्या 70 में भगवान कह रहे हैं, आपूर्य माणम चराय प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति अद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे प्रशांति मापनोति न काम कामी। इस समुद्र जो है ना मैं निरंतर नदियों के द्वारा जल भरे जाते हैं लेकिन समुद्र फिर भी बड़ा नहीं होता है, ऊपर नहीं उठता समुद्र। तो उसी प्रकार से जिसके अंदर जितनी कामनाएं हैं वो प्रवेश करती हैं और उसमें कोई कामना पैदा नहीं होती तो वो शांति प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन ने ये विचार किया है कि सब प्रकार की कामना उसके मन में आती हैं लेकिन उसमें कोई विकार नहीं पैदा होता है समुद्र के समान, तो फिर युद्ध क्यों करूं। 71वें श्लोक में भगवान ने कहा, विहाय कामान यहां सर्वान पुमान स्त्रति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा ससांतिम अधिगच्छति। कि जो सब कामनाओं को त्याग करके और चरति माने विचरण करता है विचरण करता है बिना किसी इच्छा के, निर्ममो निरहंकारा ममता रहित और अहंकार रहित, तो वो शांति प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन को लगा कि ये भी युद्ध करने के पक्ष में नहीं है। भगवान के जितने उपदेश हैं अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करने के पक्ष में नहीं है। और 72वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, ये सा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमोहति स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। कि ये आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अब अर्जुन यही सोच रहे हैं, अंतकाल की बात भगवान कर रहे हैं कि इसमें स्थित हो जाए तो फिर तो युद्ध करने की कोई बात ही नहीं है, फिर युद्ध क्यों किया जाए है? अपने मन को जो है तैयार किया जाए अंतकाल के लिए, अंतकाले स्थित्व श्याम अंतकाले, इस स्थिति में जो है स्थित होकर के व्यक्ति ब्रह्म निर्माण प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन के दिमाग में यही आया कि अब तो युद्ध नहीं करना चाहिए है ना, तो स्थिर बुद्धि के ये लक्षण है। इसलिए अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन है, कि आपके मत में अगर कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्धि है तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, कर्म नहीं घोर कर्म। अगर कर्म में लगाते तो चलो कुछ मान लेते कि भाई कुछ कर्म में लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आप क्या कर रहे हैं, घोर कर्म में लगा रहे हैं। अपने शत्रुओं की हत्या भी जो है ना घोर कर्म नहीं है, लेकिन यहां घोर कर्म का मतलब अर्जुन क्या कह रहे हैं, घोर कर्म का मतलब क्या है, अपने संबंधियों का अपने पर अपने कुटुंब की हत्या करना, ये घोर कर्म है। आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो ये अच्छा। अब हम देखेंगे कि इसके पहले भगवान ने कितने बार समर्थन किया युद्ध का, तो दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कितने श्लोक हैं जिनमें भगवान ने युद्ध का समर्थन किया था और फिर कहां से भगवान का उपदेश मुड़ा कि फिर भगवान ने युद्ध करने की बात नहीं कही। तो आप देखेंगे कि भगवान का उपदेश शुरू हुआ है श्लोक संख्या 11 से। श्लोक संख्या 11 से भगवान का प्रवचन शुरू हुआ, तो इसमें तो भगवान ने युद्ध का समर्थन किया है। भगवान कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस तुम प्रज्ञावादान च भासते, कि तुम बुद्धिमानों के से वचन कहते हो और शोक करते हो उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए है ना। गदासून अगदासून से नानु शोचन्ति पंडिता, जिनके प्राण चले गए हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं तो पंडित उनके लिए अनुशोच नहीं करते, अनु माने बार 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 शोक नहीं करते हैं पंडित लोग है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, युद्ध करना चाहिए है ना। तो यहां युद्ध करने के पक्ष में भगवान ने उपदेश दिया। फिर श्लोक संख्या 12 में तो भगवान आत्मा के विज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं कि हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से हमेशा रहें हमेशा रहेंगे। श्लोक संख्या 13 में भी भगवान ने इसी बात की व्याख्या की है कि जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता है, शरीर बदलता है। इस श्लोक संख्या 14 में भगवान ने कहा है क्या, मात्रा स्पर्शा सुख कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो ने प्यास्तांत दीक्षा सु भारत है, कि सुख दुख उसी प्रकार से आते जाते हैं जैसे कि सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती रहती हैं। तो इनको सहन करो। तो यहाँ युद्ध का समर्थन हो रहा है भगवान के द्वारा। और श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं यमिना मिथंते थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहां पर भी युद्ध का समर्थन मालूम पड़ रहा है। श्लोक संख्या 16 में भगवान ने सिद्धांत बतलाया है कि जीवात्मा जो है कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक संख्या 13 में भगवान ने क्या बताया है, आत्मा की अविनाशिता बतलाई है कि इस आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 18 में भगवान ने क्या बताया है कि देह जो है क्या है, देह क्या है, क्षण भंगुर अंतवंत, और देही कैसा है, नित्य नित्य शोकता शरीर ना। तो नित्य जीवात्मा के ये जितने शरीर हैं सब अनित्य कहे गए हैं, अनाशिनो प्रमेश है।